आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस सालाना सरबरा मीटिंग में शिरकत करने के लिए भारत के दो रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के उनके हमनसब नई दिल्ली में फौजी और फौजी तकनीकी ताउन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। आला चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में 2026 के लिए बैनुल अक्वामी आइडिया की सदारत संभाल ली। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत आज 100 रोजा बाल विवाह मुक्त भारत मुहिम का आगाज करेगी। काशी तमिल संगमम 2025 का पहला वफ्द आज अयोध्या जाएगा। और क्रिकेट में रायपुर में जनूबी अफ्रीका ने दूसरे एक रोजा बैनुल अक्वामी क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज बराबर कर ली है। अब खबरें तफसील से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस सालाना सरबरा मीटिंग में शिरकत करने के लिए भारत के सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। दो रोजा दौरे के दौरान सदर पुतिन कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने की भी तवक्को है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी रूस के सदर का इस्तकबाल करेंगी और उनके एजाज में एक जियाफत का एहतमाम करेंगी। भारत के वजीर आजम और रूस के सदर के दरमियान सालाना सरबरा मीटिंग दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का सबसे आला इदारा जाती मुजाकिराती तरीक़ेकार है। अब तक 22 सालाना सरबरा मीटिंग भारत और रूस में बारी बारी से मुनक़िद हो चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
रूस भारत का एक देरीना दोस्त है। भारत की खारजा पॉलिसी में भारत रूस ताल्लुकात की मजबूती हमेशा एक बुनियादी सुतून रही है। अक्टूबर 2000 में भारत और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक साझेदारी के ऐलामे पर दस्तखत के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात ने एक नई और मजबूत समत इख्तियार की, जिसके तहत तकरीबन तमाम शोबों में बाहमी ताउन में इजाफा हुआ। दिसंबर 2010 में रूस के सदर के भारत दौरे के दौरान इस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद उसत देकर खसूसी और मुराहत याफ्ता स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। तिजारत और इकतसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने को एक तरजीही शोबा करार दिया गया, जिसके तहत 2030 तक दो तरफा तिजारत को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया गया। 2024-25 में भारत और रूस के दरमियान दो तरफा तिजारत 68 अरब 70 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। नई दिल्ली से सुपर्णा साइका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के उनके हमनसब एंड्री बेलुसोव आज नई दिल्ली में फौजी और फौजी तकनीकी ताउन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की 22वीं वजारती मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि दोनों रहनुमा मीटिंग के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफा के शोबे में जामे और कसीर जहती ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के मौजूदा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल आइडिया की 2026 की सदारत संभाल ली है। भारत को इंटरनेशनल आइडिया के रुकन ममालिक की जानिब से साल 2026 का सदर चुना गया है। भारत इस इदारे के 14 बानी मुल्कों में से एक है। जनाब कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में इंटरनेशनल आइडिया के सदर का ओहदा संभाला। इस दौरान मुनक्किदा तकरीब में स्वीडन में भारत के सफीर अनुराग भूषण भी मौजूद थे। इस दौरान अपनी तकरीर में चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की बसीरत को बल्कि अपने तहजीबी विरसे की गहरी जड़ों में पेवस्त जमहूरी इकदार को भी मुश्तरक करने का ख्वाहां है। इंटरनेशनल आइडिया की सदारत दुनिया की जानिब से भारत के इंतखाबी कमीशन को सबसे मोतबर और जिद्दत पसंद इंतखाबी बंदोबस्त के आलमी इदारे के तौर पर तस्लीम करने के अमल में एक संगे मील है। यूरोपीय यूनियन की 40 रुकनी मुजाकिराती टीम आज नई दिल्ली पहुंचेगी, जो भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजादाना तिजारती माहदे FTA पर बातचीत के सबसे अहम और जामे मरहले की निशानदेही करती है। भारत के सालाना आलमी कॉन्क्लेव 2025 से खिताब करते हुए भारत में यूरोपीय यूनियन के सफीर हर्व डेल्फिन ने कहा कि मौजूदा मुजाकिरात बुनियादी तौर पर एक नए मरहले की नुमाइंदगी करते हैं, जिसे उन्होंने यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान आजादाना तिजारती माहदे से मुतालिक मुजाकिरात 2.0 करार दिया। خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزارت بال وواہ مکت بھارت ابھیان کے ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر بچپن کی شادی سے پاک بھارت کے لیے آج باضابطہ طور پر 100 روزہ جامع بیداری مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ تقریب وگیان بھون میں منعقد ہوگی، جس میں خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی اور وزیر مملکت ساویتری ٹھاکر بھی موجود رہیں گی۔ اس 100 روزہ مہم کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بیداری پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس کے تحت مباحثے، مضمون نویسی، مکالماتی سیشنز اور عہد لینے جیسے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں مذہبی رہنماؤں، معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے افراد اور شادی سے متعلق خدمات فراہم کرنے والوں کو شامل کیا جائے گا، تاکہ بچوں کے حقوق اور ان کے تحفظ سے متعلق پیغامات کو مزید مؤثر طریقے سے پھیلایا جا سکے۔ تیسرے مرحلے میں گرام پنچایتوں اور میونسپل وارڈز کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ اپنے دائرے اختیار میں آنے والے علاقوں میں بچپن کی شادی سے پاک علاقہ بنانے کے لیے قراردادیں منظور کریں۔ گجرات میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی مہم کے حصے کے طور پر 82% سے زیادہ ذاتی معلومات کے فارمز کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے۔ ریاست کے چیف الیکٹورل افسر ہریت شکلا نے گزشتہ روز سبھی تسلیم شدہ سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی اور جاری ایس آئی آر کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ گاندھی نگر میں ہوئی اس میٹنگ میں بی جے پی، کانگریس، عام آدمی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ مہم 11 دسمبر تک جاری رہے گی اور 16 دسمبر کو ووٹر فہرستوں کا مسودہ شائع ہوگا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
گجرات بھر میں رائے دہندگان کی جانب سے ذاتی معلومات پر کرنے کے بعد جمع کیے گئے فارمز کا ڈیجیٹائزیشن زور و شور سے جاری ہے۔ اس معاملے میں ڈینگ ضلع ریاست میں سب سے آگے ہے، جہاں تکمیل کا عمل 94% کی رفتار سے جاری ہے اور 6 اسمبلی حلقوں میں 100% ڈیجیٹائزیشن مکمل ہو چکا ہے۔ اب تک ظاہر کیے گئے اعداد و شمار سے اس سرگرمی کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے، جس میں 16,61,000 رائے دہندگان کو فوت اور 26,000 کو مستقل نقل مکانی کر چکے ووٹرز پایا گیا۔ وہیں 3,06,000 سے زیادہ ووٹرز کا ایک سے زیادہ جگہ اندراج پایا گیا۔ احمدآباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کاشی کے ہنومان گھاٹ، بی ایچ یو اور سارناتھ سمیت مختلف اہم مقامات کی سیر کے بعد کاشی تمل سنگمم کا پہلا وفد آج ایودھیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایودھیا میں وفد کے استقبال کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
ایودھیا کے ضلع مجسٹریٹ نکھل ٹیکارام نے شری رام آڈیٹوریم کا معائنہ کیا اور وہاں موجود افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ تمل ناڈو سے آنے والے تمام وفود باقاعدگی سے ایودھیا کا دورہ کریں گے۔ مہمانوں کی آمد کی تاریخیں 4, 6, 8, 10, 12, 14 اور 16 دسمبر مقرر کی گئی ہیں۔ ہر روز مختلف گروپ ایودھیا پہنچنے کے لیے طے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے مجسٹریٹس، پولیس اور متعلقہ محکموں کے افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ مہمانوں کو ایودھیا کے اہم مندروں، شری رام جنم بھومی، ہنومان گڑھی اور دیگر اہم مقامات پر درشن اور پوجا کے لیے لے جایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شری رام آڈیٹوریم میں ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے، جن میں ایودھیا کی روایت، موسیقی اور روحانیت کو پیش کیا جائے گا۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
گجرات کے وزیر اعلی بھوپندر پٹیل آج سفید رن دھوڑو کچھ پر جاری رنوتسو کا دورہ کریں گے اور سفید رن پر مکمل چاند کی خوبصورتی کے مشہور کن نظارے کا دیدار کریں گے۔ کچھ کی گوناگوں ثقافت، روایات اور ضیافت کا مظاہرہ کرنے والے رنوتسو نے دنیا بھر سے ہزاروں سیاحوں کو اپنی جانب راغب کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل رن اتسو کے دوران آج شام ثقافتی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس سال سفید رن سیاحوں کے لیے 23 نومبر سے کھل گیا ہے۔ موجودہ سیزن کے پہلے مکمل چاند کے موقع پر آج بڑی تعداد میں سیاح دھوردو پہنچ رہے ہیں تاکہ چاند کی روشنی سے جگمگاتے رن کی خوبصورتی کا نظارہ کر سکیں۔ سرحدی ضلع کچھ نے سیاحت کی دنیا میں اپنی منفرد پہچان بنائی ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی سیاحتی ادارے UNWTO کی جانب سے دھوردو کے سفید رن کو بہترین سیاحتی گاؤں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا، جس کے بعد ہر سال منعقد ہونے والے 4 ماہ طویل رن اتسو سے اسے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہو گئی۔ گجرات ٹوریزم، ضلع انتظامیہ اور گجرات ریاستی سڑک ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جانب سے سیاحوں کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھوج سے اشرف نتوانی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
समंदरी तूफान दितवा से मुतासिर श्रीलंका में मरने वालों की तादाद बढ़कर 479 हो गई है, जबकि 350 अफराद अब भी लापता हैं। इस दौरान आने वाले दिनों में जजीरे पर बदतर मौसमी हालात की पेशगोई की गई है। श्रीलंका समंदरी तूफान दितवा के बाद बड़े पैमाने पर सैलाब, मिट्टी के तोड़े खिसकने और बुनियादी ढांचे के ढह जाने से नबर्द आजमा है। इसके अलावा कई जिलों का राबता मुनक़ता हो गया है, जिससे कुदरती आफात से निमटने की मुल्क की सलाहियत शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सरगर्मियों में तआवुन के लिए फिजाई, समंदरी और जमीनी असासों का इस्तेमाल करते हुए इंसानी हमदर्दी का हाथ बढ़ाया है। पेश है एक रिपोर्ट।
तूफान डिटवा के श्रीलंका में तबाही मचाने के चंद दिनों बाद, जिसमें सड़कें, पुल, बिजली की लाइंस और रेलवे लाइंस शदीद मुतासिर हुई, मुकामी हुकाम अब राबता बहाल करने पर तवज्जो दे रहे हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को एक अहम सहारा फराहम किया है। भारतीय फजाइया के C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे ने गुज़िश्ता रात एक बेली ब्रिज और 500 वाटर प्योरिफिकेशन किट्स पहुंचाई हैं। ये पहले से तैयार शुदा फौरन नस्ब किया जा सकने वाला पुल उन इलाकों में जमीनी राबता बहाल करने में मदद देगा जिनकी कनेक्टिविटी इस तूफान में कट चुकी है। भारत की इमदाद मुसलसल जारी है, जिसमें रिलीफ सामान की एयरलिफ्ट, इनखला के ऑपरेशन और तिबी इमदाद पूरे जजीरे में शामिल है। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुईन फारूकी।
इंसानी हकूक की वकालत करने वाले सरकर्दा बलोच कारकुन मीरियार बलोच ने फिनलैंड की जानिब से पाकिस्तान में अपने सिफारतखाने को बंद करने के फैसले की तारीफ की है। मीरियार बलोच ने कहा है कि यह फैसला इस्लामाबाद हुक्मरानी में नाकामी और बिगड़ती हुई सलामती सूरत हाल के तहत संगीन तशवीश की अक्कासी करता है। मीरियार बलोच ने फिनलैंड की वजारत खारजा के 28 नवंबर के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ये बात कही। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद, काबुल और यांगून में वाक़े फिनलैंड के सिफारतखाने 2026 में बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और शुमाली राजस्थान के इलाकों में आज सर्द लहर के हालात जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आसाम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ इलाकों में सुबह के औकात में गहरा कोहरा छाया रहेगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 3 एकरोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 359 रन के निशाने का पीछा करते हुए जनूबी अफ्रीका ने 4 गेंद बाकी रहते हुए 6 विकेट पर 362 रन बना लिए। एडन मरकर्म ने सबसे ज्यादा 110 रन जबकि मैथ्यू ब्रेट्सके ने 68 रन बनाए। भारत की जानिब से अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इस महीने की 6 तारीख को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मजमून के अहम अहम निकात को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि नामियाती काश्तकारी को अपनाया जाए, ये फितरी हयातियाती तनवो के फरोग में अहम रोल अदा करने के साथ साथ मुल्क के जरिए शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखती है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंचेंगे, दिल्ली में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, इस खबर को आज के सभी अखबारों ने नुमाया किया है। हुकूमत ने मर्दमशुमारी का किया ऐलान, 2 मरहलों में होगा मुकम्मल। हुकूमत पहला मरहला अप्रैल से सितंबर 2026 जबकि दूसरा मरहला फरवरी 2027 में होगा शुरू।
और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस सालाना सरबरा मीटिंग में शिरकत के लिए भारत के 2 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के उनके हमनसब नई दिल्ली में फौजी और फौजी तकनीकी तआवुन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। आला चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में 2026 के लिए बैनुल अक्वामी आइडिया की सदारत संभाल ली। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत आज 100 रोजा बाल विवाह मुक्त भारत मुहिम का आगाज करेगी। काशी तमिल संगम 2025 का पहला वफ्द आज अयोध्या जाएगा। और क्रिकेट में रायपुर में जनूबी अफ्रीका ने दूसरे एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत को 4 विकेट से हरा कर सीरीज बराबर कर ली है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।